ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक परिदृश्य में वर्ष 2017 एक अलग ही तरह से विशिष्ट और कुछ अव्यवस्थित सा वर्ष रहा। समलिंग विवाह को कानूनी वैधता मिली, एक लेबर सेनेटर ने त्यागपत्र दिया चीनी प्रभुत्व पर चले स्कैंडल के कारण, और संवैधानिक संकट कुछ ऐसा बढ़ा कि टर्नबुल सरकार की गद्दी की पकड़ पर भी खतरा बन गया। तो आइए पलट कर देखते हैं वर्ष 2017 को। वर्ष की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री टर्नबुल और नव निर्वाचित अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक फोन कॉल के साथ। दोनों ही नेताओं ने यही कहा कि ये एक मित्रता वाला बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव फोन वार्तालाप था, लेकिन कहीं वो बातचीत लीक हो गई और पता चला कि दोनों के बीच खासी तकरार हुई मानस आइलैंड पर रुके हुए शरणार्थियों को अमरीका भेजने की डील को लेकर। प्रधानमंत्री ने तो चाहा कि ये फोन वार्तालाप गुप्त ही रहता।
It's always better when these conversations remain confidential.
और बस कुछ अधिक समय नहीं बीता और श्री टर्नबुल को आ घेरा एक नई समस्या ने। कंजर्वेटिव लिबरल सेनेटर कोरी बर्नांडी ने निर्णय लिया अलग होने का और अपनी स्वयं की एक रूढ़िवादी राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की।
This morning I resigned as a member of the Liberal Party. It really is time for a better way.
सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के रेशियल वेलिफिकेशन लॉ को बदलने का प्रयास किया, विवादित सेक्शन 18C को बदलने का प्रयास, ताकि नस्ल के आधार पर किसी को आहत करने, चोट पहुंचाना एक अपराध नहीं माना जाए। इसकी वजह से प्रवासी समुदाय में रोष रहा, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
फ्री स्पीच इज अ वैल्यू एट द वेरी कोर ऑफ आवर पार्टी।
लेकिन क्रॉस बेंच ने लेबर का साथ दिया और सेनेट में बिल असफल हो गया, खारिज हो गया। और वैसे सिर्फ यही सरकार की हार नहीं थी। तब के इमिग्रेशन मंत्री पीटर डाटन ने नागरिकता टेस्ट यानी सिटीजनशिप टेस्ट में खासे बदलावों को लाने की बात की, लेकिन एक बार फिर विपक्ष और निक जेनोफोन टीम ने इन बदलावों के विपक्ष में वोट किया। लेबर के टोनी बर्क ने कहा कि प्रस्तावित इंग्लिश टेस्ट बहुत अधिक कठिन रहेगा, इससे कम पढ़े लिखे प्रवासियों के लिए एक जैसे स्थायी रोक लग जाएगी।
What sort of snobbery leads a government to say, unless you reach university level of English, we'd rather you weren't here?
और एक दिन पॉलीन हैंसन, वन नेशन नेता, बुर्का पहनकर सेनेट में आई। उनका ये प्रयास रहा कि इस विवादित पहनावे पर प्रतिबंध लगे। अब उनके इस कदम पर सभी ने निंदा की और खास तौर पर अटॉर्नी जनरल जॉर्ज ब्रैंडिस ने जो कहा वो तो याद ही रहेगा।
To mock its religious garments is an appalling thing to do.
अब जैसे ही सरकार ने स्नोई माउंटेन्स हाइड्रो प्लांट के विस्तार की बात को आगे बढ़ाया, एनर्जी पॉलिसी को लेकर लगातार विवाद खड़े हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने एक राष्ट्रीय नेशनल स्पेस एजेंसी की घोषणा की। बैंकिंग सेक्टर में रॉयल कमीशन जांच के आह्वान को प्रधानमंत्री ने लगभग पूरे साल भर टाला, लेकिन जब उनके अपने ही बैक बेंचर्स, खासतौर पर नेशनल्स ने इसके समर्थन की धमकी दी तो कोई और रास्ता नहीं रहा और बैंकिंग सेक्टर में रॉयल कमीशन जांच की घोषणा की गई। और फिर ऑस्ट्रेलियन राजनीतिक इतिहास में हुई सबसे बड़ी हलचल। इसकी शुरुआत हुई जब ग्रीन सेनेटर स्कॉट लुडनम ने जाना कि वो दोहरी नागरिकता रखते हैं। वो न्यूजीलैंड की नागरिकता भी रखते थे और ये संविधान के विरुद्ध था। अंततः उन्होंने त्यागपत्र दिया।
I'm resigning as a senator for Western Australia and co-deputy leader of the Australian Greens effective today.
और इसके बाद दोहरी नागरिकता के घेरे में कई लोग आ गए। कईयों ने त्यागपत्र दिया। 7 केसेस को हाई कोर्ट में सलाह के लिए भेजा गया और लगभग सभी को जैसे संसद से बाहर होना पड़ा। ग्रीन से लुडनम और लरीसा वाटर्स बाहर हुए और वन नेशन के मैल्कम रॉबर्ट्स बाहर हुए, लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी जब सरकार को झेलना पड़ा उप प्रधानमंत्री बानवी चॉइस का नुकसान इसी दोहरी नागरिकता की वजह से, और फिर स्थिति दर की यूं बनी कि कहीं एक सीट से बहुमत ही न चला जाए।
The decision of the court today is clearly not the outcome we were hoping for.
खैर, बानवी जॉयस ने न्यूजीलैंड की नागरिकता त्यागी और उपचुनाव में अपनी सीट पर वापस विजय भी पाई, लेकिन इसके बाद स्वतंत्र तस्मानियन जैकी लैम्बी, लिबरल के स्टीफन पेरी और जॉन अलेक्जेंडर घिरे दोहरी नागरिकता के चक्कर में। जॉन अलेक्जेंडर भी बानवी जॉयस की तरह उपचुनाव में गए और वापस अपनी सीट से जीते, और राहत मिली प्रधानमंत्री को। सरकार ने मूल निवासी संगठन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। प्रस्ताव था कि संसद को सलाह देने के लिए एक स्थायी एबोरिजिनल बॉडी होनी चाहिए, और सरकार ने एक बड़े ही अलग ढंग से ऑस्ट्रेलियंस की राय मांगी एक पोस्टल सर्वे के द्वारा। बात थी समलिंग विवाह की। एक बड़ा ही तीव्र और प्रभावी प्रचार रहा इसके समर्थन में, और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने ऑस्ट्रेलियंस को इसके विरोध में मत देने का आह्वान किया।
If you're worried about religious freedom and freedom of speech, vote no. If you don't like political correctness, vote no.
अंततः समलिंग विवाह के पक्ष में लगभग 60% से समर्थन मिला, और जब मैरिज एक्ट में बदलाव का बिल पेश हुआ और पास हुआ तो माहौल बना एक गाने के साथ। साल के आखिर तक आते आते विवादों और आरोपों में फंस गए लेबर सेनेटर सैम दस्तयारी, अपने चीनी संबंधों चाइनीज डोनर के साथ दान वाले मामलों में। विपक्ष के नेता बिल शॉर्टन ने उन्हें त्याग पत्र देने को कहा।
After much reflection, I've decided that the best service I can render to the Federal Parliamentary Labour Party is to not return to the Senate in 2018.
अब 2018 में सिटीजनशिप मामला चलता रहेगा जब और कुछ राजनीतिक हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। साथ ही इनकम टैक्स, धार्मिक स्वतंत्रता, यूनिवर्सिटी फंडिंग को लेकर राजनीतिक गर्माहट तो बनी ही रहेगी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।